वंदनीय गुण कितने होते हैं और आदरणीय गुण कितने होते हैं, ये जरा विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है। रखेंगे ना? आदरणीय गुण तो लौकिक दृष्टिकोण से हम उनको मानते हैं जो हमसे विद्या में बड़े हों, शिक्षण में बड़े हों, उम्र में बड़े हों। तो उम्र में बड़े, बड़ों का आदर, ये लौकिक आदर है। उम्र के हिसाब से जो हम आदर करते हैं वो शारीरिक दृष्टिकोण से है, आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं, धर्म के दृष्टिकोण से नहीं। माता पिताओं का आदर शारीरिक दृष्टिकोण से होता है, बच्चों की तरफ से, बड़े हैं, आदर हैं, हमारे लिए शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं। हो सकता है विद्या भी देने वाले हों माता पिता, किसी बच्चे के माता पिता शिक्षक भी रहते हैं, स्कूल में भी वही पढ़ाते हैं और घर में भी वही पढ़ाते हैं, किंतु ऐसे बहुत कम होते हैं। स्कूल के शिक्षक वो भी आदरणीय हैं, किस तरह से जय जिनेन्द्र कहने लायक। अब जय जिनेन्द्र शब्द को कह देते हैं तो यह धार्मिक दृष्टिकोण यहां आता है, यानी आप भी भव्य हैं, आप में भी आत्मिक विकारों को जीतकर परमात्मा बनने की शक्ति है, आप भी बनिए, यह अर्थ होता है जय जिनेन्द्र का। तो एक शिक्षक को भी हम कहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। शिक्षक का धार्मिक दृष्टिकोण से हम यदि आदर करते हैं तो जय जिनेन्द्र से ही करेंगे, और एक लोक व्यवहार के दृष्टिकोण से करते हैं तो कुछ भी कहना नहीं पड़ता। हाथ जुड़ गए, चरण स्पर्श हुआ, बस इससे ज्यादा लोक व्यवहार होता नहीं। संसार में ऐसे कौन से शास्त्र हैं जिनमें कि लोक व्यवहार करते समय फलाने शब्द का उपयोग करना चाहिए, ऐसे कोई सांसारिक क्षेत्र में लोक व्यवहार के कोई ग्रंथ हैं? नहीं है। पर लोक व्यवहार में है ये देखा जाता है कि बड़ों को हाथ जोड़ते और विशेष उपकार्य हो तो चरण स्पर्श भी करते हैं, पर उनके पीछे कोई शब्द नहीं है। शब्दों का ये उपयोग करो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर एक धर्मात्मा को धर्म की दृष्टिकोण से धार्मिक रास्ते पर चलने वाला किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति धर्म की दृष्टिकोण से आदर कर रहा है, विनय कर रहा है, तो एक शब्द का भी उपयोग करता है और साथ साथ शरीर का भी उपयोग करता है। अपने शरीर का उपयोग कमर झुकाना मस्तक झुकाना हाथ जोड़ना इसका भी उपयोग होता। फिर आत्मा की दृष्टिकोण से यदि हम धर्म के दृष्टिकोण से धर्म की दृष्टिकोण से यदि हम आदर करना चाहते हैं तो गुणों के तरफ देखते हैं और गुण हैं तीन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। धार्मिक क्षेत्र में यही तीन देखे जाते हैं गुण का मतलब ये तीन। धार्मिक क्षेत्र में किस कुल वाला है किस जाति वाला है कितना सुंदर है कितना कुरूप है ये नहीं देखा जाता। धार्मिक क्षेत्र में गुण देखे जाते हैं आत्मा के गुण उनका आचार विचार धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार का है यह बात मुनियों के अंदर भी देखे जाते हैं देखी जाती है और श्रावक के भीतर भी देखी जाती है। मुनियों के लिए जब हम देखते हैं मुनियों को जब हम देखते हैं तो वहां पर पाया जाना चाहिए तीनों सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों का होना अनिवार्य है। श्रावक को जब हम देखते हैं तो वहां तीन नहीं अधिक से अधिक ढाई आंशिक देश संयम पंचम गुणस्थान के योग्य आचार विचार यदि होता है तो हम आदर उस हिसाब से करते हैं। तो पंचम गुणस्थान है या नहीं देखना तो पड़ेगा अन्यथा जय जिनेन्द्र कह सकते थे सामान्य रूप से। जय जिनेन्द्र कहने में तो किसी कुछ भी नहीं देखना आवश्यक नहीं होता कोई भी व्यक्ति हो जय जिनेन्द्र कहता है तो आप भी जय जिनेन्द्र कहते हैं इसमें कोई परीक्षा वाली बात रही नहीं। जय जिनेन्द्र कहने के लिए कोई परीक्षा की नहीं जाती क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो तो भी अपन जय जिनेन्द्र करते तुम गुणों की दृष्टि से क्या परीक्षा करोगे सम्यक तो हो ना हो चारित्र हो ना हो सदाचार हो ना हो तो जय जिनेन्द्र करते। तो जय जिनेन्द्र का तात्पर्य है कि तुम अपने पाप कर्मों को छोड़ो जिनेन्द्र के भगवान के समान परमात्मा बन सकते हो तुम भी बनने का प्रयत्न करो पुरुषार्थ करो आगे बढ़ो तुम्हारा हम स्वागत करते हैं आदर करते हैं जय जिनेन्द्र शब्द के माध्यम से। ये हो गया अब हम पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों की तरफ देखते हैं तो वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और आंशिक सम्यक चारित्र वहां है तो उनके लिए दो शब्द वंदना और इच्छामि। इच्छामि तो किसके लिए इच्छामि तो अक्र प्रतिमा अक्रा प्रतिमा हो तो करेंगे अक्रा ना हो तो अखरेगा इच्छामि कैसे करें ऐसा लगेगा अक्रा ना हो तो अखरता है। अक्र प्रतिमाधारी को इच्छामि करते हैं और जिनके अक्रा नहीं दस से नीचे हैं उनको वंदना शब्द का उपयोग करते हैं। दसवीं गुणस्थान का दसवीं प्रतिमा का एक विकल्प आता है कि उनको भी इच्छामि करना चाहिए तो इच्छामि किया जा सकता है दसवीं प्रतिमाधारी। क्योंकि वो भी ग्रह का संसार का ग्रह का त्यागी तो नहीं कह सकते, परंतु संसार का त्यागी होकर किसी एक जगह अपनी धर्म साधना करते हुए रहते हैं, संसार से अलिप्त रहते हैं। उनका आदर इच्छामि के माध्यम से हो या वंदना के माध्यम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि विशेष रूप से यहां समझने की, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दो हैं और आंशिक सम्यक चारित्र है तो पंचम गुणस्थान बनता है, चाहे वो प्रतिमाधारी कोई भी हो और 11 प्रतिमाधारी छुल्लक ऐलक भी क्यों न हो, उनका गुणस्थान पांचवा होता है। तो इनको तो देखना पड़ेगा, वंदना करे कि इच्छा में करे, प्रसंग है ना, देखना तो पड़ता ही है। और जय जिनेन्द्र कहने वाले जीवों को तो कुछ भी देखना नहीं पड़ता, वहां क्या देखोगे, पर इनको तो देखना पड़ेगा कि इनके पास प्रतिमा कितनी है। तो 11 प्रतिमा हो तो इच्छा में और 11 ना हो तो वंदना, 11 ना हो तो वंदना कहना है। वंदना का क्या तात्पर्य है, प्रश्न उठता है। वंदना का अर्थ ये नहीं समझना कि मैं उनकी वंदना कर रहा हूं या नमस्कार कर रहा हूं या उनके लिए मस्तक झुकाकर शरण जा रहा हूं, मंगल समझ रहा हूं, वंदना का तात्पर्य वो नहीं है। इच्छामि का तात्पर्य होता है इच्छामि, इच्छा करता हूं, संस्कृत पद है ये। जब आप स्कूल जाते होंगे संस्कृत पढ़ा होगा, 8th, 9th, 10th में एक कोर्स की बुक वहां यहां महाराष्ट्र में चलती संस्कृत की, अब नहीं चलती, बंद हो गई, लेकिन पुस्तक तो नहीं मिल गई है अपने को। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कोल्हापुर से एक नई पुस्तक लाए हैं, वो 8th, 9th, 10th की है और नई छपी हुई है इसी साल की, तो शायद कहीं कहीं चलती हो कहीं कहीं नहीं चलती हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जिसको लेने का है वो ले सकता है, ऐसा होकर के अभी चल रही है, पुस्तक मिली है। इच्छ यह एक क्रियापद है, इच्छ धातु ये क्रियापद शब्द है, इसका उपयोग इच्छा, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः, इस प्रकार रूप चलते हैं इसके। इच्छति यानी वह इच्छा करता है, इच्छता है यानी वे दोनों इच्छा करते हैं, इच्छन्ति यानी वे सब इच्छा करते हैं, इच्छसि यानी तुम इच्छा करते हो, इच्छतः यानी तुम दोनों इच्छा करते हो, इच्छत यानी तुम सभी इच्छा करते हो, इच्छामि यानी मैं इच्छा करता हूँ, इच्छा वह यानी हम दोनों इच्छा करते हैं, और इच्छा मह यानी हम सब इच्छा करते हैं। ये संस्कृत भाषा का क्रियापद शब्द है जिसको हम अभिवादन शब्द के रूप में इच्छामि का उपयोग कर रहे हैं। इच्छामि यानी मैं भी इच्छा करता हूं, किसको कह रहे हैं अपन, छुल्लक और ऐलक को। तो छुल्लक और ऐलक से हम ये कह रहे हैं कि मैं भी इच्छा करता हूं। प्रश्न उठता है कि किसकी इच्छा करते हो तुम, हाँ, कई लोगों को ये धारणा है कि आप जैसे बनने की हम इच्छा करते, इच्छा करते, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। आप जैसे बनने की इच्छा नहीं करते, आप जो बनना चाहते हैं वैसे हम भी बनना चाहते हैं, उसकी हम इच्छा करते हैं, ये मीनिंग है, ये अर्थ है। आप जो हैं वैसे हम बनना नहीं चाहते, आप जैसे हैं वैसे हम बनना नहीं चाहते, बल्कि आप आगे बढ़कर जो बनना चाहते हैं, जिस पद पर हो वो तो एक क्षुल्लक पद है, पर इस क्षुल्लक पद के पद से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। संयम पद से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुनि पद से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप इच्छा क्या करते हैं, क्षुल्लक जी से पूछें, तो वो कहते हैं हम इस एक देश संयम को पालन करते करते हम संयम की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम अखाड़े में हैं, मैदान में नहीं, हम मैदान की इच्छा रखते हैं और अखाड़े में क्षुल्लक पद को पालन करते हैं, क्षुल्लक व्रतों का परिपालन करते हैं। तो क्षुल्लक जी क्या इच्छा कर रहे हैं, संयम की, पूर्ण संयम की, महाव्रतों की। महाव्रत ध्येय रूप होते हैं और अनुव्रत महाव्रत की साधना के लिए माध्यम रूप होते हैं। तो माध्यम महाव्रत नहीं होता, माध्यम मंजिल नहीं होता, मंजिल तो महाव्रत, मुनि के व्रत ही महाव्रत। और वैसे बनने की वो इच्छा रखते हैं क्षुल्लक जी, ऐलक जी वो इच्छा रखते हैं। वो जिसकी इच्छा करते हैं उसी की वंदना करने वाले, उनको इच्छा में कहने वाले, वे भी उसी की इच्छा करते हैं, रखते हैं। मोक्ष किससे मिलना है, अनुव्रत से या महाव्रत से? तो आपको महाव्रतों की इच्छा करना चाहिए कि अनुव्रतों की? महाव्रतों की ही इच्छा करना चाहिए, महाव्रतों की ही इच्छा की जाती है। परंतु महाव्रती आप न बन सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में अनुव्रतों की व्यवस्था है। अब धीरे धीरे चलो, क्षुल्लक जी भी इसी परिस्थिति में जी रहे हैं। इच्छा तो महाव्रतों की ही थी जब वो क्षुल्लक नहीं बने थे, इच्छा तो महाव्रतों की थी, परंतु महाव्रत धारण करने की शक्ति नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 11 प्रतिमाओं को ले लिया, क्योंकि उतनी ही शक्ति थी, क्षुल्लक बने, 11 प्रतिमाओं का पालन करने लगे। परंतु क्षुल्लक बनने के बाद उनसे पूछो, क्या तुम्हारी इच्छा यहीं रहने की है क्षुल्लक पद पर जीवन पर्यंत हमेशा के लिए? तो क्षुल्लक जी कहते हैं यहां पर रहा नहीं जाता, ये तो महाव्रत नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने ये ले लिया। महाव्रत पालन नहीं कर सकता था, इसलिए ये 11 प्रतिमाएं लेनी पड़ी मुझे, ये मेरी मंजिल नहीं, मेरी इच्छा तो महाव्रतों को धारण करने की ही है। क्षुल्लक ऐलक चाहे आप लोग कोई भी हो, इच्छा किसकी रखनी चाहिए प्रश्न है। महाव्रतों की ही इच्छा रखनी चाहिए, महाव्रतों को ही इच्छा रखने का विधान है। अब क्षुल्लक जी को हाथ जोड़कर कमर झुकाकर इच्छामि महाराज ऐसा कहा, तो आपके मन में क्या भाव है? क्षुल्लक बनने के भाव है कि महाव्रति बनने के भाव है? महाव्रति बनने के भाव है, महाव्रति बनने के भाव है, तो महाव्रति के पास जाकर के नमोस्तु बोलते तो महाव्रति बना देते। क्षुल्लक जी के सामने जाकर के इच्छा में कहने की क्या जरूरत थी, मैं भी इच्छा रखता हूं। एक व्यवहार, आप क्षुल्लक जी के पास गए हैं तो उनका समादर किए बिना रह नहीं सकते, किसी न किसी शब्द के माध्यम से उनका समादर करेंगे ही। तो आप समाधर करते समय कहेंगे क्या? इच्छामि। तो इच्छामि का तात्पर्य वहां क्या है? मैं भी आप जैसे बनने की नहीं। वो क्या है? वो बनना चाहते हैं कि फिर शुल्लक बनना चाहते हैं क्या? तो इच्छा तो मावृतों की है, आप भी जबरदस्ती में शुल्लक बनेंगे क्या? नहीं। शुल्लक जी जिसकी इच्छा रखते हैं, किसकी इच्छा रखते हैं? मावृतों की। उसी की इच्छा मैं भी रखता हूं, ये आप कहते हैं। ये मीनिंग ये है महाराज, आप जो चाहते हैं आपके पीछे हम भी हैं, वैसे रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। कामना तो वही है, आप आगे हैं हम पीछे हैं, इच्छा में महाराज यानी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तुम आगे बढ़ो हम पीछे, नहीं तो तुम पीछे हटो हम आगे बढ़ते। धर्म में ऐसा कोई नहीं कहता, तुम पीछे हटो हम आगे बढ़ते। संसार में तुम पीछे हटो हम आगे बढ़ते हैं। धन हो, संपत्ति हो, किसी दूसरे का ज्यादा धन देकर तुम पीछे हटो हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्म भी एक धन है, उसमें भी हमें आगे बढ़ने का ही विचार करना चाहिए। किसी छुल्लक जी को देखा और छुल्लक महाराज आप आगे चलो हम पीछे जाएं, फिर छुल्लक बन करके ही जाना पड़ेगा आपको, ऐसा जरूरी है क्या? एक छुल्लक जी को देख करके नहीं, इनसे तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। आपके पास जो शक्ति है उसके अनुरूप आप काम करेंगे, उनके पास जो शक्ति है उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। किंतु वो सामने आए हैं तो उनके प्रति हम अभिवादन कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, उनके गुणों के प्रति आदर कर रहे हैं। तो उनके गुण कितने हैं? तो ढाई हैं। ढाई गुणों का आदर होता है, ढाई गुणों की वंदना नहीं होती। असंजदम न वंदे। छुल्लक जी असयम है क्या? संयम है। ढाई कभी भी संयम नहीं कहलाता। संयम असयम 50% संयम 50% असयम, यानी दोनों को मिलाकर दूध और छाछ दोनों को मिलाया है तो दूध नहीं है, वहां 100% दूध चाहिए। संयमा संयम उसका नाम है, छुल्लक जी के संयम का नाम संयमा संयम और मुनि के संयम का नाम संयम। मुनि के पास 100% संयम है, छुल्लक जी के पास संयमा संयम है, यानी संयम भी है असंयम भी है, संयमा संयम गुणस्थान, उस गुणस्थान का नाम भी वीरता विरत संयमा संयम ऐसा आता है। छुल्लक जी जिस गुणस्थान में रहते हैं उस गुणस्थान का नाम वीरता विरत संयमा संयम ऐसा है। तो वीरता विरत गुणस्थान की वंदना होती है क्या? क्या पूछ रहा हूं? पंचम गुणस्थान की वंदना होती है क्या? गुण तो है, वंदना क्यों नहीं हो रही है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, संयम नहीं है। इसलिए कहा है असंजदम न वंदे। असंजदम न वंदे का मतलब पंचम गुणस्थान में भी असयम है, चौथे में भी है, नीचे सब जगह असयम ही असयम है। पहले गुणस्थान से पंचम गुणस्थान तक की जीव वंदनी नहीं होते असयम के कारण। तो छुल्लक जी के पास असयम कितना है अभी? 50%। संयम कितना आया है? 50%। तो वो 50 असयम 50 जब तक नहीं जाएगा तब तक वंदनीयता तो नहीं आएगी, पर आदर के योग्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसलिए मैं कह रहा था जहां आदर के योग्य गुण होते हैं वो वंदनीय हो ये जरूरी नहीं है, परंतु जो वंदनीय गुण होते हैं उनका आदर भी अवश्य होता है। दोनों तरफ समझना है। और जहां पर गुण नहीं होते वहां पर केवल आदर ही रह जाता है, आदर ही रह जाता है। एक भी गुण नहीं है, मान लो सम्यक दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, एक भी गुण नहीं, उस परिस्थिति में आदर किस प्रकार होगा? लौकिक दृष्टि से आदर होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से आदर होगा ही नहीं। जैसे एक श्रावक आए, चौथे गुणस्थान वाले, मिथ्या तो छोड़ चुके, सामने से आए, आपने जय जिनेन्द्र कहा, यहां तो धार्मिक दृष्टिकोण से सम्यक दर्शन का भी समादर किया, वंदना नहीं की, वंदना नहीं की, आदर किया, हाथ जोड़ा, जय जिनेन्द्र बोला, आदर किया, हाथ जोड़ना भी आदर है, और मन में क्या है, ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के कारण से एक उनके प्रति आपकी विशेष आस्था है कि सम्यक दृष्टि है, विशेष बहुमान है, सम्यक दृष्टि के प्रति बहुमान होना चाहिए कि नहीं, बहुमान है। और जिसके पास सम्यक दर्शन ना हो तो धार्मिक दृष्टि कौन से बहुमान किसको दें हम? बहुमान देने के लिए कोई गुण नहीं है तो बहुमान नहीं दे सकते, तो बहुमान पूर्वक तो देखा नहीं जाएगा, आदर पूर्वक अवश्य देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आदर तो होता है, और आदर किस रूप में, जय जिनेन्द्र कह करके जो आदर किया उतना ही। धर्म के दृष्टिकोण से बहुमान दे रहे हैं तो वहां पर धर्म भी होना, कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वहां धर्म भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों हैं, वो चौथा गुणस्थानवर्ती मनुष्य, चौथा गुणस्थानवर्ती मनुष्य सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों धारण कर रहा है तो वह आयतन के कोटि में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को मान्यता वाला सम्यक दृष्टि होता है, चौथा गुणस्थानवर्ती है वो। सच्चे देव शास्त्र गुण को मान रहा है, मिथ्या तो त्याग चुका है, इसलिए उनको हम बहुमान दे रहे हैं। बहुमान किस दृष्टि से? ये आयतन है, आयतन के कोटि में इनको रख रहे हैं। आयतन का तात्पर्य होता है सत्संगति, सहारा, योग्य सहारा। जो सम्यक दृष्टि है उनके पास रहेंगे तो सम्यक्त्व का विकास होगा। तो संगति अच्छी है कि बुरी है? आपके धर्म में तरक्की हो रही है जिनके संगति से, गुणों में विकास हो रहा है जिसके संगति से, तो सम्यक दृष्टि ही होगा ना, तो उसका बहुमान करते हैं आप, सम्यक्त्व का बहुमान करते हैं। आप धन्य हैं, मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त किया, मिथ्यात्व को जीत लिया। सबसे पहले जीतने वाली बात तो यही थी, उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए तुम्हारा हम बहुमान करते हैं, स्वागत करते हैं, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कहा, अब जय जिनेन्द्र कहा तो सही, अब इसने जय जिनेन्द्र का तात्पर्य तुम और जीतो ये कह रहे हैं, और जीतो, तुमने तो पहली सीढ़ी चढ़ ली है, सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता। सम्यक दर्शन जब उदित होता है, सम्यक ज्ञान उसके साथ अपने आप आता है, ये प्रथम सीढ़ी पर पग रखते ही द्वितीय सीढ़ी और प्रथम सीढ़ी एक साथ प्राप्त हो जाते। तृतीय सीढ़ी है चारित्र। तृतीय सीढ़ी चारित्र है। उस चारित्र को अंगीकार करने से पहले जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को धारण कर रहा है उसने कुछ तो जीत लिया ना। क्या जीता? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है मालूम? सब शास्त्रों में कहा इस बात को, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। अंधश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है। अंधश्रद्धा, अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। अज्ञान कहो, अंधश्रद्धा कहो, मिथ्यात्व कहो, बात एक ही है। वो झूठ कहो, एक ही है। अंधश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है। उस अंधश्रद्धा को तुमने जीत लिया तो सबसे बड़ा काम किया। इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। शुरुआत में, शुरुआत की अपेक्षा दुनिया में सबसे बड़ा काम तो तीनों को धारण करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीनों को धारण करने वाला मुनि सकल महाव्रति बड़ भागी भव भोगन तय वैरागी। छह डाल में कहा है ना, पांचवी ढाल में। दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? मुनि। क्योंकि उसने समस्त पापों को त्यागा, सारे भाग्य के द्वारों को खोल दिया। जिस ऊंचाई पर पहुंचना था पहुंच गए, जिस पाप को छोड़ना था, जिस अनर्थ से बचना था बच गए। वो व्यक्ति भाग्यशाली या पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति भाग्यशाली? जिसने पाप को छोड़ा वो भाग्यशाली, और जो पाप को छोड़ता है वही पुण्यवान बनता है। और पुण्यवान, हम पुण्य जो है हमारा भाग्य माना जाता है। हमारा भाग्य क्या है? पुण्य संपत्ति के कारण से हम भाग्यवान कहलाते हैं, और हमारे पास जितना पाप होता है उसके कारण से हम दुर्भागी कहलाते हैं। पापी दुर्भागी, पुण्यात्मा बड़भागी। मुनि बड़भागी हैं। अब अविरत सम्यक दृष्टि जो जिसने जीत लिया है केवल एक मिथ्यात्व को, वो हमारा आयतन हो गया, यानी हम उनके साथ संगति करने लायक हो गए और वो हमारे साथ संगति करने लायक हो गया। अब दोनों मिलकर के सम्यक दर्शन रूपी गुण में तरक्की करेंगे, सम्यक ज्ञान में तरक्की करेंगे, सम्यक चारित्र में तरक्की करने को सोचेंगे, बैठकर विचार विमर्श करेंगे। संसार से स्वतंत्र कैसे होना उसका विचार करेंगे। उसके गाथा गाएंगे, मंगल गाथा गाएंगे। जय जिनेंद्र, ये शब्द जिसने पहली सीढ़ी चढ़ी है उनके लिए भी कह रहे हैं, लेकिन पंचम गुणस्थान वाले को नहीं कह रहे हैं। उनको असयम जीतना है। अभी इंद्रियों को भी जीतने वाला है, असयम को भी जीतने वाला। उनके पास दो काम है, इंद्रियों को जीतना, असयम को जीतना। कर्मों को तो भगवान बनने के बाद ही जीत सकेगा। इंद्रिय और असयम को जीतना, ये शेष है उनके पास। इनके पास इसने केवल एक मिथ्यात्व को जीत लिया है और कुछ नहीं। एक मिथ्यात्व को जीत लिया है। अब असयम को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है, कर्मों को जीतना है। इतने काम शेष हैं अभी। तो उस दृष्टि से हम उनको ये कहते हैं कि आप भी जिनेंद्र भगवान के समान जयवंत हो जाइए, सबको जीतिए। जैसे मिथ्यात्व को जीत लिया है, अब इंद्रियों को भी जीत करके आप वृत्ति बन जाओ, वृत्तियों की कोटि में आ जाओ। पहले काल में एक व्यवस्था थी, ये थी चार वर्ण। मालूम है ना चार वर्ण कौन से होते हैं? कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण माने जाते हैं। धर्म सभी के लिए कॉमन है, धर्म का ग्रहण हर वर्ण वाला ग्रहण कर सकता है, और इन वर्णों का अर्थ लोग नहीं समझते आज के। वस्तुतः ये जो वर्ण हैं, आचार की अपेक्षा अपनी क्रियाओं की अपेक्षा से बने हैं। क्रियाओं के आधार से वर्ण की उत्पत्ति हुई है, न कि जन्म की अपेक्षा से, न कि जाति की अपेक्षा से। जाति और जन्म प्रधान नहीं है वर्णों में। ब्राह्मण किसको कहें? ब्रह्म जानता है, कुछ नहीं जानता। आज तो जन्मा है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। वो ब्रह्म यानी आत्म साधना, ब्रह्म यानी आत्मा। आत्म साधना किससे होती है? पापों को त्याग करने से आत्म साधना बनती है। पाप कितने होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पंच पाप, और एक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को जीत कर पंच पापों को छोड़ेंगे तो सही में भी बनेंगे, सम्यक दृष्टि भी बनेंगे। पहला मिथ्यात्व को जीतना, सम्यक दृष्टि बन गई। फिर पंच पापों को छोड़कर सही में बनना, वृत्ति बन गई सही में। पंच पाप छूट गए तो वृत्ति बने, सही में बने, और सम्यक दृष्टि भी बना और सही में भी बना। इनको कहते हैं हम ब्राह्मण। क्यों? पाप को त्याग कर आत्म साधना कर रहा है, आत्मा को परमात्मा बनाने के कार्य में लगा हुआ है। जो ऐसा काम कर रहा है उनको कहते हैं हम ब्रह्मम, ब्राह्मण, ब्रह्मणी। ब्रह्मणी गुणान साधयति इति ब्राह्मण है। आत्मा में जो गुणों की साधना करते हैं वो ब्राह्मण, और ब्राह्मण सबसे पूज्य होता है, आदरणीय होता है, वंदनीय होता है। महावृति बन जाएगा, वंदनीय होगा। सच्चे ब्राह्मण तो अपन है मुनि लोग। आत्म साधना रत्नत्रय के माध्यम से आत्म साधना करने वाले कौन है? मुनि है। ब्राह्मण वर्ण वाले, उच्च ब्राह्मण वर्ण मुनियों में पाया जाता है, क्योंकि उच्च व्रत, उच्च सम्यक दर्शन, उच्च साधना, उच्च ब्रह्म यानी आत्मा, आत्म साधना जिनमें हो वो ब्राह्मण। मुनि से छोटा छुल्लक ऐलक, वो भी ब्राह्मण। शेष प्रतिमाधारी ग्यारहवीं से लेकर नीचे पहली प्रतिमा तक, ये सभी ब्राह्मण। वृत्तियों को ब्राह्मण कहा जाता है। जब वृत्ति ब्राह्मण हो गए तो क्रिया की अपेक्षा से तो हुए क्या? जन्म से हुए क्रिया की अपेक्षा से। ये ब्राह्मण वर्ण का अर्थ है। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन? धर्म की रक्षा करने वाला नहीं, धर्मात्मा ओम की रक्षा करने वाला, और धर्मात्मा जिस देश में रहते हैं उस देश की रक्षा करने वाला। जो राजा होता है या जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को हम क्षत्रिय कहते हैं। जैसे किसी मुनि पर संकट आया, किसी धर्म पर संकट आया, देश पर संकट आया, कमर कस के खड़े होने वाला जो व्यक्ति होता है उनको हम कहते हैं क्षत्रिय। क्षतात् पापात् रक्षति इति क्षत्रियः, जो पाप से रक्षा करते हैं, विनाश से रक्षा करते हैं। हम धर्म से नष्ट हो रहे हों, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। धर्मात्माओं की देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय माना जाता है, क्षत्रिय कुल वाला माना जाता है। यानी रक्षा जो कर रहे हैं ना, देश की धर्म की रक्षा जो कर, उसके कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को भी व्यवहार से, उपचार से क्षत्रिय कहा जाता है। उपचार से है वो, खरोखर नहीं, उपचार से। खरोखर नहीं, उपचार से। अपन क्या समझते हैं, हाँ उनके घर में यहां पैदा हुए हैं तो हम खरोखर अपन को ही क्षत्रिय समझते हैं। क्षत्रिय नहीं, जो ऐसा कार्य करता है हमेशा और जो डरपोक है, धर्म से भागता है, डरपोक है, देश रक्षा से भाग जाता है, वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो उनको हम क्षत्रिय कहें। असली क्षत्रिय तो जो उस कार्य में लगा हुआ है, वो कार्य करता है, उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। एक क्षत्रिय है, एक है वैश्य। वैश्य कौन? व्यापारम करोति, व्यापार उद्योग आदिम करोति, यह असौ स वैश्य। जो व्यापार उद्योग खेती आदि काम जिनकी आजीविका है, व्यापार ही आजीविका है, खेती आजीविका है, करता है कुछ न कुछ, उद्योग करता है, उद्योग ही जिसका जीवन हो, उसको हम कहते हैं वैश्य। व्यापार उद्योग करने की अपेक्षा से वैश्य हुआ, देश और धर्म की संस्कृति की रक्षा करने की अपेक्षा से क्षत्रिय हुआ, और व्रतों का पालन करने की अपेक्षा से, आत्मा को साधने की अपेक्षा से, ब्रह्म आत्मा को, वो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा है ही नहीं, काल्पनिक है, वो है ही भी कहां, कहां जन्मे थे, किसके बेटे थे ब्रह्मा बताओ, किसी ने जन्म दिया था क्या? कोई जीव आत्मा आकाश से नहीं टपकता, गर्भ से ही जन्म लेता। ये संसार का सिद्धांत है, नियम है। ब्रह्मा किसके लड़के, महेश किसके लड़के, किससे जन्मे, विष्णु किससे जन्मे, कहीं सुना है? इनका जन्म, इनके माता पिता ये थे, इनसे जन्मे ऐसा? वो कहते हैं आप मानते हैं, वो कुछ भी कहते रहते हैं, आप मानते जाते हैं, वो कहते हैं इसलिए हम मानते हैं, अनुकरणवादी है हम परीक्षा प्रदानी नहीं है, अनुकरणवादी, वो कहते हैं इसलिए हम मानते हैं। तो कुछ भी कहते रहते हैं तो मानते जाना पड़ेगा क्या? विचार भी करना पड़ेगा। ब्रह्मा अवतार है, ब्रह्म अवतार, विष्णु अवतार, महेश अवतार, अवतार कहां से हुआ? मेन केंद्र कौन सा? माता पिता। तो कहां बैठे हैं वो? स्वर्ग में थे। यदि कहोगे कि स्वर्ग में थे तो स्वर्ग में तो देवता लोग किसी को जन्म नहीं देते, वहां पर उपपात जन्म है, गर्भ जन्म तो है ही नहीं, तो धरती पर ही जन्मे होंगे ये तीनों। तो उनके माता पिता कौन थे, आता है क्या? उनके यहां आता ही नहीं है, तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। नहीं आता है तो फिर क्यों नहीं पूछेंगे ना, तो उसका उत्तर क्या? काल्पनिक हुआ ना, तो हमारी बातों को हमने कल्पना से गाड़ी और बता दिया कि ब्रह्म अवतार, विष्णु अवतार, और ये आए कहां से, तो स्वर्ग से आए, इतना तक हम कह सकते हैं। वहां से वेद का सहारा लियो, लेकिन भेद का भी सहारा लियो। भेद खुलना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। केवल वेद से कुछ काम नहीं चलेगा, भेद भी चाहिए उसमें। सारी शंकाओं का निरसन पूर्वापर हो जाए तो वेद वेद है। वेद में भेद ही नहीं खुल रहा है तो काल्पनिक ठहरेगा। तो उनके क्या वेद काल्पनिक है? ऐसे घबराने की क्या जरूरत है? काल्पनिक है क्या नहीं, दिमाग से सोचना, परीक्षा करना, घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है? जैन धर्म के सब शास्त्र काल्पनिक है, किसी ने कह दिया, घबराने की क्या जरूरत है? यदि काल्पनिक है तो वास्तविक काल्पनिक है रहेंगे ही, और नहीं है तो नहीं है। सत्य सत्य ही होता है, असत्य असत्य होता है। असत्य को किसी ने सत्य बोल दिया तो घबराने की क्या जरूरत है, विकल्प करने की क्या जरूरत है? असत्य असत्य यदि है तो रहेगा ही, और असत्य यदि सत्य ही होता है तो सत्य ही रहेगा। किसी के थोपने से सत्य असत्य नहीं होता, असत्य सत्य नहीं होता। किसी को कुछ व्याख्यान करने से, पुस्तक में लिख करके रखने से कोई सत्य असत्य नहीं होता, असत्य सत्य नहीं होता। उस पर सोचने पर ही निरसन होगा ना, चर्चा करने पर ही निरसन होगा ना। प्रश्न उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर नहीं मिल पाता। ये किसके वो अवतार कहां से आ गए? तूने कहा वहां से आ गए, तो वहां से आ गए तो फिर जाएंगे कहां? आने के बाद तो वहीं जाएंगे, तो फिर कब आएंगे? तो पुनः पुनः आएंगे, कभी आएंगे, यदा यदा पुनः आएंगे। तो यदि आएंगे तो आओ जाओ ये कितनी बार करोगे? हमेशा करते रहोगे, और ऐसे हमेशा करते रहोगे तो फिर उम्र भी तो होगी वहां। तो मरण करके आते हैं क्या वैसे ही आते हैं? मरण करके आते हैं तो मरण करके आते हैं तो मरण करके आने के बाद यहाँ क्या करके जाते हैं? तो महेश सबको नाश करके जाता है, ब्रह्मा सबकी सृष्टि करता है, विष्णु सबकी रक्षा करता है, ऐसा ही तो है। ऐसी कथा सुनते ही कि नहीं, उस कथा पर जरा चिंतन करो, विचार करो। नहीं, पूजा करो या ना करो बाद की बात, पर विचार करो, विचार तो करो। विष्णु भगवान है कि संसारी है? भगवान तो नहीं कहोगे ना, संसारी है, ठीक है, संसारी है। महेश संसारी है क्या भगवान है? ब्रह्मा भगवान है क्या संसारी है? तीनों को संसारी मानोगे तो फिर प्रश्न सवाल हो, प्रश्न खड़ा होता है। विष्णु आए सबकी रक्षा की, ये गए, महेश आए जिसकी इन्हें रक्षा करके चले गए, उन्होंने संहार करके चले गए। तो संहार करने वाला क्या क्या संहार करता है? ब्रह्मा जन्म देता है। तो हम सबको ब्रह्मा ने ही जन्म दिया क्या? ब्रह्मा के आदेश के बिना एक पत्ता भी इधर का उधर नहीं होता। तो हम ब्रह्मा के हाथ में हैं क्या? वो जैसा नचाएगा हम नाचेंगे? ऐसा होता ना तो ब्रह्मा इतना नचाता हुआ बेटा है तो नचाने वाले को पाप लगेगा कि नहीं? हमको नरक भी वही भेजेगा। नरक में जन्म कौन कराएगा? जो जन्म दे वो ब्रह्मा, तो नरक वही भेजेगा, त्रिंच गति में वही भेजेगा, फिर भेजते समय मारेगा भी वही, जन्म कराएगा भी वही, क्योंकि उनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं चलता। तो जन्म देने से पहले मारा किसने? तो महेश को नाम ले लो कि महेश ने मारा, ब्रह्मा ने जन्म दिया और बीच में विष्णु ने रक्षा की। आप जिंदे हैं इसका मतलब विष्णु आपकी रक्षा कर रहा है, आप मर रहे हैं मतलब महेश आ गया है, आप जन्म ले रहे हैं का मतलब ब्रह्मा ने आपको भेजा, आप निकल गए। ऐसा कुछ है क्या? हमको कोई जन्म कराने वाला, मारने वाला, रक्षा करने वाला, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति, ऐसी कोई व्यक्तित्व किसी के पास, आत्मा के पास है क्या? विचार करोगे तो पता चलेगा, नहीं करोगे वैसा ही रहेगा अज्ञान। वे ही मारते हैं ये कहेंगे तो हमको मरने की क्या जरूरत? और लोग मरते हैं, अपने तरफ से मरते हैं, अपने तरफ से मरने की क्या जरूरत? सीधा महेश को बुला लेते, आओ मैं जीना नहीं चाहता हूं, मुझे मारो, जल्दी मारो, विष्णु से कहो तुम दूर हो जाओ, रक्षा मत करो, महेश को बुलाओ, मुझे मारो, मैं मरना चाहता हूं, और मेरा मरण जब आएगा तब तुम आकर के मारते, वो नहीं चाहिए हमें, अभी मरना चाहते हैं हम। मरते समय हम आयु, अपने आयु की पूर्णता से हम मरते हैं, क्या कोई आकर के मारता है? तो सिद्धांत ये सत्य है, हम अपने निमित्त से मरते हैं, अपने आयु कर्म के कारण से मरते हैं, या तो हम अपने आयु कर्म के होते हुए भी विष आदि भक्षण करके, आग लगा करके या एक्सीडेंट करवा के मरते हैं, अपने कारण से हम मरते हैं। सारे कर्तृत्व धर्तृत्व सभी अपने पास है, मरते भी हम ही अपने निमित्त से, जन्मते भी हम ही अपने निमित्त से, कर्म को भी बांधते हैं अपने निमित्त से, और हम अपनी रक्षा भी करते हैं अपने निमित्त से, अपने द्वारा। कर्म ले जा रहा है नरक गति में, पैदा कराया, किस कर्म ने कराया? आयु कर्म ने। कर्म वह आयु कर्म समाप्त हो गया, अब क्या हो गया? मरा। तो कर्म के कारण से ही मरे, तेल खत्म हो गया, दीपक बुझ गया, वैसा ही है ये। आयु कर्म खत्म हो गया, हम वहां से निकले, दूसरी गति में आए, तेल नया भर करके ही लाए, पूर्व से आयु कर्म को बांध करके ही लाए ना, यहाँ जन्मे, यहाँ जन्मे के पश्चात पूर्व कुछ जीवन व्यतीत किया, फिर मरा, जीवन मरण, जीवन मरण कर्मों के कारण से हो रहा है। ये कर्म सत्य है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य है? कर्म सिद्धांत को जिसने दिया वो है असली परमात्मा आपका, सत्य बोलने वाला, सत्य का ज्ञान कराने वाला, वे हैं अरहंत, केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ परमात्मा है। संसारी लेकिन उनके पास दिव्य ज्ञान है, विशद ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है। तीन लोक के चराचर सारे जगत के प्राणियों के ज्ञाता हैं वो, एक सेकंड में क्या होता है तीन लोक में सब उनको दिखता है ज्ञान के भीतर, और जैसा दिखता है वैसा ही कहते हैं। तो कर्म भी दिखे होंगे ना, ये संसारी जीव कर्म बांधते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं। कर्म भी तो संसारी प्राणियों में उनको कर्म भी दिखे होंगे ना, कर्म भी दिखे। और कर्म दिखे इसलिए कर्म सिद्धांत का जैसा था वैसा ही उपदेश दिया। और जिनको ये नहीं दिखे उन्होंने कल्पना ही गाड़ी, उन्होंने कहा ये सब कर्म कहां दिखता है, दिखता नहीं। तो उन्होंने कल्पना ही गाड़ी। कौन करता है? परमात्मा करता है, भगवान करता है। किसी ने कहा ईश्वर करता है, किसी ने कहा भगवान करता है, किसी ने कहा देव करता है, किसी ने कहा नामों से ब्रह्मा विष्णु महेश करता है। देव, ये देव भी कहां है? देव भी कहां है? देव भी नहीं, उनको देव भी नहीं कह सकते, क्योंकि देव भी सभी गतियों में जा सकता है ना, मरण करके नरक भी तो जाता है। देव मरा, मनुष्य हुआ, पाप किया, नरक गया, तो वो आत्मा जो आ रही है देव गति से, वो नरक भी जाएगा, त्रिंच गति में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। परंतु ये ब्रह्मा स्वयं जाता है क्या कहीं? तो उनको तो स्थिर मानते हैं किसी एक जगह, और उनको कहते हैं कि सारी सृष्टि को पैदा करने वाला, तीन लोक भी उन्हीं से पैदा हुआ। यहां भी प्रश्न उठता है, तीन लोक यदि ब्रह्मा से पैदा हो गया तो फिर ब्रह्मा तीन लोक पैदा करने से पहले कहां था? तीन लोक में ही था या कहीं बाहर था? और ये तीन लोग को पैदा करने से पहले ये वस्तु कहां थे फिर? इतने सारे पुद्गल मटेरियल सब कहां पड़े हुए थे? कहीं ना कहीं होंगे, तभी तो किया पैदा। और यदि वहां ये थे तो किसी न किसी रूप में थे, तो उसको तो हम कहते ही थे लोक, वही तो लोक है। फिर नया पैदा क्या किया? जो होता नहीं उसको पैदा हम नहीं कर सकते, और जो रहता है उसका विनाश हम नहीं कर सकते। ये सिद्धांत सत्य है, इसका विनाशक कोई हो सकता है क्या? आकार का विनाशक कोई हो सकता है, परंतु इसका ही जन्मदाता, पहले कहीं भी नहीं था, अब नया हमने बना दिया, आप पुद्गल को बना सकते? आकाश में कुछ भी नहीं है यहाँ, और आपको कुछ भी इधर उधर का सामान नहीं देंगे, आप पुद्गल बना करके दिखाइए। एक ईंट बनाओ, एक ईंट, ईंट को लेकर के, मिट्टी को लेकर के ईंट नहीं बनाना। आकाश में कुछ भी नहीं, वहां पर ईंट बनाओ, बन सकेगा? तो ब्रह्मा ने कहां से बनाया जगत को? नहीं बना सकता। यदि ये कहो कि बनाया है, जैसे आपने ये बिल्डिंग बनाया, हॉल बनाया, किसने बनाया? आप लोगों ने ही बनाया, तो आप लोग ब्रह्मा हो गए। और आपको नहीं चाहिए है तब इसको गिराओगे, विष्णु महेश हो गए। और अभी किसी को गिराने नहीं दे रहे हैं और गिरने भी नहीं दे रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, रोज प्रवचन होना है, समय पर रक्षा तो कर रहे हैं, तो आप विष्णु हो गए। अभी तो आप विष्णु हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश उनको मत कहो, आप स्वयं हो। आपको जो चाहिए उसको बना लेते हैं। कहां से लाते हैं मटेरियल बनाने के लिए? जो लोक में है उसी को। लोक को आपने बनाया है क्या? लोक को नहीं बनाया, लोक के ही सामग्री को लेकर आपने एक कोई वस्तु खड़ी कर दी। तो जो पर्याय को जन्म देता है वह वस्तुतः व्यक्ति तो एकमात्र निमित्त है, पर वस्तु में जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपनी उपादान शक्ति से उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से। पुद्गल ही थे सभी, ये सीमेंट से बना है, लोहे से बना है, ईंट से बना है, पत्थर से बना है, क्या थे ये सब? पुद्गल ही तो थे। उन पुद्गलों को अलग अलग जगह से जो थे उनको लाया, बुलाया, खरीद के लाए, एक जगह इकट्ठा किया, इसको आकार दे दिया, बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग का निर्माण करता कौन है? ब्रह्मा है कि आप हैं? ब्रह्मा है कि आप हैं? बिल्डिंग किसने बनाया? तो ऐसे कैसे कहें कि ब्रह्मा के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता? सब कुछ आप करते हो और ब्रह्मा पर डालते हो कि उन्होंने किया, तो उनकी जिम्मेदारी से छोड़ देते, आपने बिल्डिंग क्यों बनाया? कि आपके आदेश के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, बिल्डिंग मुझे चाहिए है, एक बिल्डिंग बना के दो। क्या बना के दे सकेगा? यदि ब्रह्मा देव है, विष्णु देव है या महेश देव है, इन तीनों को देव ही मान ले, तो कोई देव आकर के हर किसी के घर को, हर किसी के किसी वस्तु को, वस्त्र को, आभूषण को बना बना करके देता है क्या? तो ये बने कैसे? हमने बनाया या उनने बनाया, ये देखना है। तो यदि हमने बनाया है तो हम ब्रह्मा है, और जब हमारे लिए ये आभूषण नहीं चाहिए, उसको तोड़कर दूसरा आभूषण बनाते हैं, तो महेश भी हम हैं। फिर उसकी उत्पत्ति करता दूसरे आभूषण की हम ही हैं, तो हम उत्पत्ति करता ब्रह्मा, ब्रह्मा भी हम। उस आभूषण को मिटाया, महेश भी हम। फिर उसको बहुत दिन तक पहना, विष्णु भी हम। चोरी होने नहीं दिया विष्णु ने, तो विष्णु हम सुरक्षित रखा। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये काल्पनिक हैं, ये कल्पना अपने ऊपर घटित करो तो सत्य हो जाएंगे, पर किसी आकार पर कल्पना करते हैं तो न तो स्वर्ग में हैं, न कहीं अधोलोक में बैठे हैं, न किसी जगह विद्यमान है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी नहीं है, ये कल्पना गाढ़ी गई है। और काल्पनिक वस्तु कभी भी काल्पनिक ही होती है, और जो काल्पनिक है वो मिथ्या है। जो नहीं है उसको है कहना मिथ्या, और जो है उसको है कहना ये सम्यक। जो होता है उसको है कहो, उसको सम्यक तो कहते। तो इसको है कहो ना, आपने बिल्डिंग बनाया, बनाया कि नहीं, सत्य है कि नहीं, सत्य है। तो ये ब्रह्मा सत्य है, जिसने बनाया उसी ने बनाया, वो सत्य है, वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा यानी सृष्टि करता, ब्रह्मा यानी कोई परमात्मा, ऐसा नहीं समझो। सृष्टि करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, विनाश करने वाले को महेश कहते हैं, और रक्षा करने वाले को विष्णु कहते हैं। रक्षा भी हम ही करते हैं इसलिए हम विष्णु, विनाश भी हम करते हैं इसलिए हम ही महेश, और उत्पन्न भी हम ही करते हैं बिल्डिंग आदि वस्तुओं को, इसलिए हम ही ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अन्य कोई नहीं है, ये हम ही हैं, ऐसा समझो। तो ये सत्य है, ये सम्यक है। नाम कुछ भी हो, नाम कुछ, विष्णु नाम रखो चलेगा, महेश नाम रखो चलेगा, ब्रह्मा नाम रखो चलेगा, या दूसरे नाम लेकर के रखो अपने आप को इन तीनों के जगह चलेगा, ये सत्य है, सम्यक है। जो होता है उसको है कहना ये सम्यक तो है, और जो होता ही नहीं है ही नहीं, केवल कल्पना है, उसको मिथ्या तो कहते हैं। थोड़ा सा अन्यत्र गया विषय। इच्छामि शब्द का उपयोग करने से पहले हम ये समझे इच्छामि का अर्थ क्या है। मैं भी इच्छा करता हूँ, किसकी? हाँ, आप समझ गए ना, किसकी? महावृतों की। आप छुल्लक को क्या, आप छुल्लक किसकी इच्छा कर रहे हैं? महावृतों की। उसी की मैं भी इच्छा करता हूँ, ऐसा मीनिंग है। ये इच्छामि शब्द बड़ा प्राचीन है। चौथे काल में भगवान महावीर ने इस इच्छामि शब्द का उपयोग, उनके काल में भी हुआ है ये, और इसलिए इच्छामि शब्द का उपयोग शास्त्रों में मिलता है। 2000 साल पहले ये इच्छामि शब्द का उपयोग किया गया, लिखा गया कि छुल्लक अलग को इच्छामि करना चाहिए। 2000 साल पहले जो सबसे पहले जैन ग्रंथ लिखे गए इतिहास में, उन ग्रंथों में ये लिखा है इच्छामि करना चाहिए वस्त्रधारी को। वस्त्रधारियों को क्या बोलना चाहिए? इच्छामि। वस्त्रधारी कैसा वस्त्रधारी? प्रतिमाधारी वस्त्रधारी। प्रतिमाधारी हो, वस्त्रधारी हो तो इच्छाकार कहो। यहां तक कहा कि आरिका को भी इच्छाकार ही कहो। ये प्राचीनतम उल्लेख है। दो ही शब्द दिया उनने, एक नमोस्तु और एक इच्छामि। कोई अन्य शब्द मिलते ही नहीं, न जय जिनेन्द्र मिलता है, न वंदना, न इच्छा, न वंदामी। ये शब्द शास्त्रों में नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे दो ही। नमोस्तु करो किसको? रत्नत्रयधारी को, मुनि को, पंच परमिष्टि को, नव देवता को। इच्छामि करो किसको? वस्त्रधारियों को। इतना ही कहा। क्या कहा? वस्त्रधारियों को इच्छाकार कहो। और कैसे? दर्शन और ज्ञान, इन दोनों से सहित को वस्त्रधारी को इच्छाकार कहो। अब प्रश्न उठता है, ये वंदामी कब से चला? फिर वंदामी कहने की पद्धति कब से आई, और वंदामी शब्द का क्या अर्थ है, ये भी समझेंगे ना। तो ध्यान से सुनना, वंदामी कैसे ये शब्द का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ। देखिए, छुल्लक और अलक को कितनी प्रतिमाएं होती हैं आपको पता है? कितनी होती हैं? 11 प्रतिमाएं होती हैं। और आरिका को कितनी प्रतिमाएं होती हैं? होती है कि नहीं? प्रतिमा होती है। अभी भी कोई लोग होती ही कह रहे हैं, कि कई बार आया ये प्रवचन में, इस कान से सुनते हैं उस कान से भी, या तो सुनते ही नहीं है। आरिकाओं को प्रतिमाएं होती हैं कि क्या होती हैं? उपचार महाव्रत होते हैं, प्रतिमाएं एक भी नहीं होती। उपचार महाव्रत होते हैं आरिका को। अब उपचार महाव्रत धारी आरिका बड़ी है या छुल्लक अलक इत्यादि, छुल्लिका इत्यादि, ये जो प्रतिमाधारी हैं ये बड़े हैं? उनको तो महाव्रति कहा जा रहा है और इनको प्रतिमाधारी कहा जा रहा है। बड़े कौन? प्रतिमाधारी बड़े हो, प्रतिमाधारी बड़े हैं, वही तो कह रहा हूं ना। आपको कई बार मैं कहता हूं, फिर भी जहां का तहां रहते हैं। आरी का बड़ी या प्रतिमाधारी छुल्लक अलग बड़े? आरी का बड़ी, छुल्लक अलग छोटे। छुल्लक जिसको, प्रतिमा जिसके पास है, वो तो श्रावक की कोटि में ही आते हैं, और उपचार महाव्रत जिसके पास है वो श्राविका नहीं कहलाती। आरिका श्राविका नहीं है, समझ रहे क्या बता रहा हूं? आरिका श्राविका कहलाती है क्या? नहीं है। श्राविका यानी कौन? फिर प्रश्न उठता है, ग्यारह प्रतिमाओं में से किसी भी प्रतिमा में रहने वाली को हम श्राविका कहेंगे। प्रतिमाएं श्रावक और श्राविका में होती हैं और उपचार महाव्रत आरिका में होती है, उनकी एक भी प्रतिमा नहीं होती। परंतु गुणस्थान सबका एक ही होता है, एक यानी पहला नहीं पांचवा एक होता है नीचे एक पांचवा होता है। ऐसा क्यों उनको महावृति कहा और फिर इनको अनुवृति कहा, प्रतिमाधारी कहा, फिर भी गुणस्थान एक क्यों, आरिका का छठा गुणस्थान क्यों नहीं हुआ, महावृति कह रहे हैं तो नहीं, महावृति तो नहीं कह रहे हैं, उपचार महावृति कह रहे हैं, साक्षात महावृति नहीं कह रहे हैं, साक्षात महाव्रत आरिका में टिक नहीं सकते। किस कारण से? वस्त्र परिग्रह होने से। वहां साक्षात महाव्रत नहीं टिक सकते जहां पर एक लंगोटी भी है, एक लंगोटी तन पर, वहां महाव्रत टिक नहीं सकते। महाव्रत यानी कि वस्त्र परिग्रह के त्याग के बाद ही महाव्रतों का ग्रहण हो सकता है, क्योंकि वस्त्र संबंधित हिंसा का निरोध होना चाहिए, रुकना चाहिए। हिंसा वस्त्र से हिंसा होती कि नहीं, उसको भी जो रोके वो महाव्रति, संपूर्ण हिंसा को जो रोके वो महाव्रति, और जो नहीं रोक पा रहे हैं वो उपचार महाव्रति या तो प्रतिमाधारी, उपचार महावृति कहो या तो प्रतिमाधारी कहो। तो उपचार महावृति धारी को भी वस्त्र है और प्रतिमाधारियों को भी वस्त्र है, और वस्त्र किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है। आरिका के पास ज्यादा है क्या ऐलक के पास ज्यादा है? आरिका के पास, ऐलक के पास कितना है? ये एक लंगोटी मात्र है, पर ये श्रावक की कोटि में आ रहे हैं। एक लंगोटी वस्त्र है, थोड़ा सा ही वस्त्र है, लेकिन ये श्रावक की कोटि में है और आरिका इनसे बड़ी है। वस्त्र ज्यादा होने के बाद भी आरिका की साड़ी में तो देखो देखो 16 हाथ की साड़ी होती है, कितने हाथ की, और ऐलक के पास एक ही हाथ की लंगोटी है, उसमें कितने लंगोटी बनते हैं 16 लंगोटी बन जाएंगे ऐलक को आरिका के उस वस्त्र में, है कि नहीं? फिर भी बड़े कौन, देखो कितना बड़ा चढ़ा दिया आप लोगों को, स्त्री पर्याय को। भगवान ने पक्षपात नहीं किया, हाँ इसके बाद भी पक्षपात नहीं किया। ऐलक सोचेंगे भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं, मैं एक हाथ का लंगोटी रखने वाला, आरिका की 16 हाथ की साड़ी और वो बड़ी, इतनी बड़ी साड़ी फिर भी बड़ी, और मैं एक हाथ का लंगोटी पहनने वाला, मैं कैसा छोटा, मैं नहीं मानूंगा, भगवान पक्षपात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो बोलो भगवान पक्षपात कर रहे हैं क्या? नहीं करते, भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। कैसे नहीं करते? बड़ी क्यों कहा उनको? हाँ, स्त्री पर्याय में अधिक से अधिक बढ़ने की क्षमता आरिका पर्याय तक ही है, लास्ट पर्याय है, उससे ज्यादा मोह छोड़ने की कैपेसिटी अब नहीं है। लेकिन आरिका ऐलक को ऐसा है क्या? नहीं है। ऐलक बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है, बढ़ने की शक्ति है और फिर मोह छोड़ नहीं रहा है, एक लंगोटी में ही अटक गया है मन, एक ही लंगोटी में अटक गया मन। और आरिका ये कह रही है मन में, अगर मुझे पुरुष पर्याय होती तो ये वस्त्र क्या लंगोटी भी मेरे पास होती तो तत्काल छोड़ देती, पर मैं पुरुष पर्याय में नहीं हूं, उनको पश्चाताप है। और इस साड़ी को छोड़ करके कब मुनि दीक्षा धारण करूं, कब मुझे पुरुष पर्याय मिले, हे भगवान जल्दी से जल्दी मनुष्य पर्याय मिले, ऐसी तरस रही है आरिका। आरिका को वस्त्र के प्रति निर्मोह होता है, तत्काल साधु बनने के भाव हैं, और ऐलक को तत्काल होने के भाव हैं। नहीं भगवान जरा ठहरो, जरा अभी बाजार में घूमना जरा असंभव है, संकोच भाव है, कहीं ना कहीं कमी है। तो अंतरंग में मोह है, आरिका को अंतरंग में वस्त्र के प्रति मोह नहीं है, लेकिन ऐलक को अंतरंग में मोह भाव है, इसलिए अटका हुआ है, नहीं तो कभी का मुनि बन गया होता ऐलक। ऐलक में मोह भाव सिद्ध हो रहा है इसलिए छोटे, और आरिका में निर्मोह भाव है वस्त्र के प्रति इसलिए बड़ी। लेकिन वस्त्र की मात्रा दोनों की देखी जाए तो वस्त्र की मात्रा तो इनकी बहुत कम है और उनकी बहुत ज्यादा है, इसके बाद भी बड़ी। तो यहाँ पर यही समझ में आता है जैन धर्म भाव प्रधान है, भाव प्रधान है। वहां भाव भावना को महत्व दिया कि नहीं, भावना को महत्व दिया, और यहां पर भी भाव है, वहां पर भी भाव है। किसके भाव उच्च हैं? आरिका के भाव उच्च हैं, ऐलक के भाव पाप के हैं, मोह के हैं, हाँ? मोह के हैं, पाप के हैं, मोह जो है पाप ही है। यहां पाप भाव है और वहां पुण्य भाव है, पुण्य भाव बड़ा है, पाप भाव छोटा है, भावों से छोटा बना दिया। ऐलक को भावों से छोटा बना दिया और वस्त्र से बड़ा बना दिया, आरिका को भावों से बड़ा बना दिया और वस्त्र से छोटा बना दिया। लेकिन फिर भी व्यवहार में किसको पहला आप आदर करोगे, आरिका का करोगे कि ऐलक का करोगे? आरिका का ही करना पड़ेगा, ऐलक को भी ये कहना पड़ेगा वंदामी माताजी, ऐलक को कहना पड़ेगा। क्यों? धर्म भावों से होता है, बाहरी वस्त्र से नहीं होता, भावों से होता है, वस्त्र की मात्रा से नहीं होता। किसका अधिक और किसका कम, भावों से होता है। तो भावों को महत्व दे दिया भगवान ने, पक्षपात किया क्या? ठीक किया, पक्षपात तो नहीं किया ना, बिल्कुल पक्षपात नहीं है, और यही सही है बिल्कुल। अगर ये कहते कि आरिका छोटी और ऐलक बड़े क्योंकि ऐलक के पास लंगोटी कम है इसलिए बड़े, वस्तु से बड़े छोटे नहीं होते कोई, वस्तु से बड़े छोटे नहीं होते, भाव से बड़े छोटे होते हैं धर्म क्षेत्र में। एक उदाहरण देता हूं, आप बता देना, प्रश्न भी पूछूंगा उसमें। एक चक्रवर्ती है, एक चक्रवर्ती है, वैराग्य हो गया, अभी छोड़ छाड़ करके सब परिग्रह को दीक्षा लेना चाहते हैं, दिगंबर मुनि दीक्षा आज ही छोड़ने वाले हैं, ठीक है? एक ये उदाहरण, चक्रवर्ती के महल के बाजू में एक गरीब व्यक्ति, उनको भी वैराग्य हो गया है, उनको भी वैराग्य हो गया है, उनके पास कुछ भी नहीं है, छोटी सी कुटिया है, आज लाता है आज खाता है, उसके भी मुनि दीक्षा के भाव हो गए हैं, ले सकता है क्या? नहीं, पहला ये बताओ, क्या गरीबों को मुनि दीक्षा नहीं मिलती? ऐसा तो नहीं ले सकता है, किंतु वो कह रहा है वैराग्य तो है मुझे, लेकिन दो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, इनको जरा लाइन पर लगा करके एक साल बाद नियम से दीक्षा लूंगा, मुनि दीक्षा लूंगा। और चक्रवर्ती कह रहा है आज ही और अभी जा रहा हूं, ये कह रहा है। चक्रवर्ती के पास तो कितना परिग्रह, दुनिया ही उनकी है, लेकिन अभी घर नहीं छोड़ा, अभी छोड़ने वाला है, एक घंटे के बाद छोड़ने वाला है। बहुत परिग्रह है, अपार परिग्रह, उनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है। दोनों को वैराग्य है, लेकिन वैराग्य में जरा सा अंतर है क्या? नहीं, क्या अंतर है? ये अभी जा रहा है और वो एक साल बाद जा रहा है, इसमें बड़े कौन और छोटे कौन है ये बताओ है? चक्रवर्ती बड़े, और परिग्रह की अपेक्षा से कौन बड़े? चक्रवर्ती ही बड़ा। भावों की अपेक्षा से कौन बड़ा? चक्रवर्ती ही बड़ा। परिग्रह की अपेक्षा से कौन छोटे? गरीब छोटा। भावों की अपेक्षा से कौन छोटा? गरीब छोटा। क्यों? एक साल बाद जा रहा है। भावों की अपेक्षा से तुलना की गई। इससे उल्टा सोच के देखो, गरीब कह रहा है कि नहीं, आप एक घंटे बाद जा रहे हैं, मैं इसी क्षण जा रहा हूं। वो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। चक्रवर्ती कह रहा है मैं जरा सबको बता के वो करके जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, इसका बताना हो चुका है, मेरे को बताने के लिए कोई है ही नहीं, घर में दो लोग थे और एक कुटिया थी, बस सबको बता दिया, निकल गया। वो कौन बड़ा? गरीब बड़ा। जैन धर्म भाव प्रधान है, सोचो, चिंतन करो। आप परिग्रह में कितने बड़े हैं इसका कोई महत्व नहीं, आप में विरक्ति कितनी है इसका महत्व है, आप निर्मोही कितने हैं उसके प्रति इसका महत्व है। परिग्रह कुछ भी नहीं है और मोह भरपूर है तो चक्रवर्ती के राजमहल को जरा नजर मिलाओ, सीढ़ियां बहुत हैं, चढ़कर के जाना पड़ेगा, 20 सीढ़ियां हैं महल में जाने के लिए। चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया है महल में और उतर के नीचे आ रहा है। गरीब सोच रहा है मैं पहला चक्रवर्ती बनूं, एक आध साल राजा बनूं, फिर बाद में दीक्षा लूं। ये सीढ़ी चढ़ रहा है और वो सीढ़ी उतर रहा है, कौन बड़ा? उतरने वाला बड़ा, चढ़ने वाला छोटा। लेगा ये भी, लेकिन अभी तो सीढ़ी चढ़ रहा है, तो इसके मन में परिग्रह के प्रति मोह भाव है, उसके प्रति परिग्रह के मोह भाव समाप्त हो चुके हैं, वो बड़ा हो गया। जैन धर्म भावना प्रधान है, बैठे बैठे हम पुण्य भी कमा सकते हैं और बैठे बैठे पाप भी कमा सकते हैं, दोनों हो सकता है। बैठे बैठे ये कहो, यहां मन में सोचो, विचार करो, अभी तो लखपति बन गया, अभी तो करोड़पति बनना है, फिर बाद में अरबपति बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, चिंतन चल रहा है। पाप का बंद हो रहा है कि पुण्य का? पाप का। और एक ऐसा विचार कर रहा है, मैं करोड़पति तो बन चुका हूं, अरबपति भी बनूंगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं, लखपति था, कोई आश्चर्य की बात नहीं था, ये धन संपत्ति वगैरह किस काम की? चाहे खरबपति बने, अरबपति बने, करोड़पति बने, ये परिग्रह मुझे खरबपति बना करके माइंड खराब करेगा, इसमें कोई सुख नहीं है, इसको तो त्यागना चाहिए। एक अरबपति खरबपति ऐसा चिंतन कर रहा है, त्याग का चिंतन कर रहा है और एक ग्रहण का चिंतन कर रहा है। बैठे बैठे ही ये दोनों कुछ न कुछ कमा रहे हैं। एक पाप कमा रहा है, एक पुण्य कमा रहा है। इसलिए कहते हैं आप संसार करते हैं तो कोई बात नहीं। महावीर भगवान ने कहा संसार करो, लेकिन संसार कैसे करो? घर में विरक्त होकर के संसार करो। भरत चक्रवर्ती घर में कहते कि नहीं, सुनाए कि नहीं कभी? भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी, वैरागी जीव को पाप नहीं बंधता। जो विरक्त रहता है गृहस्थ अवस्था में उसको पाप का बंध नहीं होता, और जो विरक्त नहीं होता है उसके लिए कुछ भी न परिग्रह कुछ भी न होते हुए परिग्रह की कामना के कारण पाप का बंध होता रहता है। हम व्यर्थ के पाप से बच सकते हैं कि नहीं? भावों में परिग्रह की कामना छोड़ करके संसार करने से पुण्य भी बड़ा होगे, और परिग्रह बढ़ना हो बढ़ेगा, घटना हो घटेगा, वो तो पुरुषार्थ करते रहो, पर कम से कम उसके भीतर जो आसक्ति होती है उस आसक्ति को खो करके संसार करोगे तो आपको कहा जाएगा भरत चक्रवर्ती जैसे घर में वैरागी। चक्रवर्ती उतना ही वैरागी था, षटखंडाधिपति था, लेकिन एक परमाणु के प्रति रागादि भाव उनको नहीं थे, रहना पड़ रहा था, विरक्त थे भीतर से, और इसी विरक्ति के कारण से उसने क्या किया, जब वैराग्य हो गया त्याग दिया और केश लोंच करके दिगंबर दीक्षा लेकर बैठ गए। पहले सामायिक में ही दिगंबर दीक्षा अभी तुरंत ली थी, पहले सामायिक में ही वो अरहंत बन गए, केवल ज्ञान हो गया। भरत चक्रवर्ती को ये हो गया, और बाहुबली को एक साल तक खड़े रहना पड़ा तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या कारण था इन दोनों में? एक के लिए विकल्प रहा और एक के लिए निर्विकल्पता रही। वो निर्विकल्पता का परिणाम केवल ज्ञान और विकल्प का कारण तपस्या। एक साल तक खड़गासन से खड़े रहो, पांव दुख रहे हैं, तकलीफ हो रही है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, टाइम हो गया, बीच में छोड़ना पड़ता। जिनवानी प्रभु देव